نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں اپنی بات کے سننے اور سنانے کا موقع دیا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ ہمیں آج کے اس وقت سے بہترین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے گھریلو جھگڑوں سے کیسے بچا جائے گھروں میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اب اس کی طبیعت کے اعتبار سے جھگڑنے والا ہی پیدا کیا ہے قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے کہ انسان بہت جھگڑالو ہے آپ دیکھیے کہ دنیا میں آنے کے پروسیس کو اگر ہم آج اس لفظ کے ساتھ جوڑیں تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس وقت کیا کر رہا ہوتا ہے ماں اور بچے کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے آپ کہہ لیجئے کہ ایک طرف سے ماں کی محنت ہے ایک طرف سے بچے کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے اور ایک موومنٹ کا نام ہے ایک حرکت کا نام ہے کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کے سٹل بیبی پیدا ہوا مردہ بیبی پیدا ہوگا بعض دفعہ آپ سنتے ہوں گے کہ بچہ دنیا میں آ نہیں رہا ماں کوشش تو کر رہی ہے جس کو آج ہم جھگڑا کہتے ہیں نا اصل میں یہ حرکت کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے سے مختلف بنایا ہے ہر انسان اپنے اندر ایک خاص سوچ ایک سمجھ ایک عقل لے کر آتا ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ شروع سے ہی جھگڑا شروع ہوتا ہے ایک طرف دنیا میں آنے کا جھگڑا ہے اس کے بعد آپ نے کبھی دودھ پیتے بچے کو ماں سے جھگڑتے دیکھا ہوگا ماں دودھ پلا رہی ہے وہ دودھ نہیں پی رہا ماں کہتی ہے ضد میں آ گیا جھگڑنا شروع ہو گیا ماں سلا رہی ہے بچہ سو نہیں رہا آپ فیل کریں گے کہ بچپن سے ہی یہ چیز ہمیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں اس طرح زد چاہ جاتی ہیں کہ بعض دفعہ سخت زبان بول دیں گی بعض دفعہ کہیں گی میں نے اب اس کو نہیں پکڑنا میں نے اس کو نہیں اٹھانا لیکن ایک چکش مکش لگی ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بچہ ایک تھوڑا سا بڑا ہوا تو گھر میں دوسرا بچہ آ گیا کبھی آپ نے خود بھی سنا ہوگا اور محسوس کیا ہوگا کہ دوسرے بچے کے آتے ہی پہلا بچہ اور جھگڑنے لگتا ہے کرینکی ہونے لگتا ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو اچھا نہیں لگا کہ میرا کوئی شریک آ گیا ہے جس کو سبلنگ جیلسی کا نام بھی دیتے ہیں لوگ کہ ایک بچہ دوسرے بچے سے جیلس فیل کرتا ہے پھر آپ دیکھیے گھر میں ایک ماں جتنے جھگڑے ایک دن میں سمیٹتی ہے میں اکثر ماؤں کو جو بچوں والی ہوتی ہیں اور اب کبھی رائڈ دینے کے ناطے ساتھ آتے جاتے میں دیکھتی ہوں نا اب ماں گاڑی چلا رہی ہے میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں اور پیچھے دو تین بچے ہیں اور شاید 15 منٹ کے راستے میں 10 مقدمے پیش ہوتے ہیں اس نے میری سیٹ لے لی اس نے میرا پینسل لے لی اس نے میرا ربڑ لے لیا پھر ماں بیچاری گاڑی چلانے کے دوران بھی ان کو سیٹل کر رہی ہوتی ہے نا یہ منظر آپ میں سے کسی کے لیے بھی نیا نہیں ہوگا تو ایسی سسٹرز تھیں تو میں نے انہیں کہا کہ اگر ایک ماں وکیل ہو اور ہر مقدمے کے پیسے لے تو سارے دن میں اس کے پاس اتنے فیصلے مقدمے آ جائیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک لائر کے پاس بھی اتنے آئیں اور واقعی یہ ماں کو اللہ نے ایک قسم کا صبر اور حوصلہ دیا ہے کہ وہ بچے کی اتنی مختلف چیزوں کو برداشت کر لیتی ہے یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی دین ہے قصہ مختصر کیا کہ گھر میں بچے بھی جھگڑتے ہیں چھوٹے بڑے بہن بھائی بھی جھگڑتے ہیں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اوپر نیچے کے ہیں اس لیے وہ جھگڑتے ہیں یعنی جو پہلا ہے اس کے بعد والا دوسرے جھگڑے گا پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ پھر جب بچے اسکول میں جاتے ہیں تو اکثر اسکول سے باتیں آتی ہیں جھگڑا ہو گیا دوستوں سے جھگڑا ہو گیا بعض دفعہ ٹیچر سے تو زندگی میں یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں پھر آپ دیکھیے کہ اگر بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو بچپن کے ساتھ ہی جب اس کی جوانی آنے والی ہوتی ہے اس کی طبیعت میں ایک عجیب سا فطور آنے لگتا ہے آپ اکثر بچوں کو دیکھیں گی 10-12 سال کی عمر کے قریب بہت چڑچڑے ہو جاتے ہیں زچ وچ ہوتے ہیں بچیاں ماؤں سے کٹتی ہیں لڑکے جو ہیں وہ اور ہی تھوڑے سے دوسرے مزاج کے ہونے لگتے ہیں تو وہ کیا چیز بتاتا ہے کہ ان کے اندر اب کچھ اور ہو رہا ہے اور ان کا ماحول ان کو کچھ اور کرنے کو دے رہا ہے बाज़ दफ़ा आप देखिए जवान होती बच्चियों को माएँ किसी बात पे रोक टोक करें तो बच्चियों को बुरा लगता है, कभी वो कुछ चाहती हैं कि हमें कहीं जाने की इजाज़त मिली जाए तो नहीं मिलती तो झगड़ती हैं। यानी कहने का मकसद यह है कि ये झगड़े इनसे कोई मफर नहीं है, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें बड़े होने पे, जैसे अब आप और मैं बड़े हो चुके हैं, हमारी ज़िंदगी एक समझबूझ वाली ज़िंदगी हो चुकी है, बच्चों के झगड़े बच्चों के ही होते हैं, इट्स फाइन, ये नेचुरल है। जो बहन भाई लड़े ना आपस में साबित कर देते हैं कि वो सगे बहन भाई नहीं है। याद रखिएगा, सगे बहन भाई आपस में ज़रूर लड़ते हैं। यानी अल्लाह ताला ने बच्चों के झगड़ों को एक किस्म का बहुत हमारे लिए एक उम्मीद अफजा बनाया कि ये बच्चा नॉर्मल है, ये इस दुनिया में पनपना चाहता है, ये जीना चाहता है, इसको अपना हक लेना आता है। अगर ये छोटी उम्र में बच्चे ना झगड़े ना, तो आप देखिएगा कि ये बच्चे फिर डफ होंगे, डल होंगे, इनको कोई मार जाए इनको पता नहीं, इनका नुकसान हो जाए तो इनको पता नहीं है। अगर आप में से किसी का बच्चा बिल्कुल ही नहीं लड़ता, बिल्कुल ही झगड़ता नहीं, बिल्कुल क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, तो ये खतरे की बात है, क्योंकि हर इंसान के अंदर अपनी तरफ से एक कैफियत होनी चाहिए कि मैं किस तरीके से अपना हक लूँ। अब वो झगड़े को लंबा करना, दूसरा करना दूसरी बात है। फिर आप देखिए बच्चे हमेशा रोते ही हैं, रोने वाली बात भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक मिनट में बच्चा रोता हुआ आता है तो दूसरी तरफ में हंसता है। इधर बच्चे झगड़ रहे होते हैं, उधर थोड़ी देर में मन भी जाते हैं। बच्चों के दिल में जो भी होता है अपने जज्बात को रो रो के जाहिर करते हैं। यानी मैं इस वक्त जो थोड़ी सी बात आपसे कर रही हूँ ना, वो ये कर रही हूँ कि बच्चे तो झगड़ते ही हैं, बच्चों को तो लड़ना ही चाहिए। कह लीजिए जिस घर में बच्चे हैं और वो बोले ना, वहाँ भी खतरे की बात है। कहते हैं ना कि बंदर का बच्चा और इंसान का बच्चा अगर अकेला खामोश बैठा हो तो ये खतरे की बात है, क्योंकि वो नॉर्मेलिटी नहीं है। बच्चों वाले घर में शोर होगा, बच्चे छोटी छोटी बात पर रोएंगे, बड़े होंगे सब कुछ होगा। और बच्चों के अंदर कुछ ऐसी सिफात होती हैं कि जिसके बारे में बाज़ लोग ये तक कहते हैं कि अगर ये बड़ों में हो तो वो वलीउल्लाह बन जाए। वो छोटी छोटी बातों को जो अपने अंदर नहीं रखते, मसला आप देखिए कि बाज़ बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी बात पर इधर लड़े उधर मन गए। अभी दो बच्चे आपस में लड़े और उन्होंने अपना मुकदमा अपनी अपनी माँ को पेश किया। और खास तौर पे बाज दफ़ा आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, देवरानी जेठानी साथ हैं, नन भावज साथ हैं, बाज दफ़ा दो बहनें साथ होती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ क्या हो रहा होता है। अभी दो बच्चे लड़े और उनकी वजह से माएँ आपस में लड़ने लगी, वो लड़के हो सकता है चार दिन तक नाराज रहे और दोनों बच्चे फिर खेल रहे होते हैं। तो अब आप देखिए कि जब बच्चों का झगड़ा बड़ों में जाता है ना, तो वो खतरनाक हो जाता है उसमें, तो बल्कि फिर और भी ज्यादा खराबी होती है। अल्लाह ताला सूरह हुजरात आयत 10 में कहते हैं फसलहु बैनकुम, तुम अपने भाइयों के दरमियान में सुलह करा दिया करो। तो बच्चे दिल में बात नहीं रखते, जिससे लड़े बाद में उसी से जाके खेल रहे होते हैं, गुस्सा नहीं पालते। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि बच्चे कुछ इस किस्म की बातें करते हैं कि अपने दिल पर लेकर सोचे तो हम बड़े नहीं कर सकते। असल झगड़े और असल मसले बड़ों के मसले हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला को फसाद अच्छा नहीं लगता, अल्लाह ताला नापसंद करते हैं। लेकिन आप देखिए कि बड़े क्या करते हैं, वो झगड़ों को पाल लेते हैं, वो दिल में ऐसा रखते हैं कि जरा सी बात के ऊपर अपने आप को दूसरों से काट लेते हैं। बस लोग खून के रिश्तों में झगड़े हो जाते हैं। आप और मैं जरा सोचें, एक होता है झगड़ा, एक होती है नाराजगी, एक होता है बस दफा दिल दुखा होना। किसी किस्म की भी बातों को आप कर लीजिए, आप देखिए कि दुनिया में अगर आप एक घर में भी देखें ना, जैसे आप अपने बचपन को देखिए, तो घर में तीन किस्म के बच्चे होते हैं। एक सबसे बड़ा बच्चा होता है जिसको पहला बच्चा कहते हैं, एल्डर कहते हैं, सबसे बड़ा है और जो भी कह लीजिए। फिर उसके बाद एक दूसरा बच्चा है जो दरमियान में आता है, मिडल वाला जिसको आप कह सकते हैं, मंझला मिडल, और उसके बाद भी होता है और पहले भी बच्चा होता है। अब ये जो बीच वाला होता है ना, इसको पहले से कम तवज्जो मिलती है, सबसे पहले को सबसे पहले मिलती है। अकेला था, नानी ने भी प्यार किया, दादी ने भी प्यार किया, हाँ हर चीज़ उसकी मानी गई। अब जब दूसरा बच्चा आया बीच का, इसको अमूमन नज़रअंदाज किया जाता है, लोग इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं कर रहे होते। फिर आ जाता है तीसरा बच्चा जिसको आप सबसे छोटा बच्चा कहते हैं, बेबी ऑफ द फैमिली, जो 16-18 साल का भी हो जाए तो वो माँ का बेबी ही बना होता है, क्योंकि जी वो बेबी था, बेबी सबसे ज़्यादा मोहब्बतें इसको मिलती हैं घर में। और आप देखिए कि ये जिद्दी भी हो जाता है, लाडला भी होता है, नखरे भी करता है। घर में अगर पांच बच्चे हैं तो सबसे पहला और सबसे आखिरी निकाल दें तो बीच में तीन बच्चे नॉर्मल होंगे, या एबनॉर्मलिटी सबसे बड़े में होती है या सबसे छोटे में होती है, ये भी एक देखने की चीज़ है। अब मुझे पता है आप सब अपना अपना सोच रही हैं कि मैं घर में किस नंबर पे हूँ जी। तो लेकिन आप देखिए कि आज साइकोलॉजी ने हर बच्चे की साइकोलॉजी को पढ़ना और उसकी उम्र के मुताबिक उससे डील करना हमें सिखा दिया है। हमें एक माँ को ज़रूर पता होना चाहिए कि ये कैसे है। जिस तरीके से भी हो, आप अपने बच्चों के अंदर ऐसी फ़र्क ही ना रखें। यानी अगर मैं सिर्फ अभी अपनी बात को बच्चों की बात तक ही रखूं कि घर में अगर आपके बच्चे अनयूजुअल झगड़ रहे हैं, एक्स्ट्रा ही लड़ रहे हैं, तो आप हमेशा देखें कि वजह क्या है। बाज़ दफ़ा माँ किसी एक बच्ची के साथ दे रही होती है और हर बात पे कहती है, अच्छा तुम छोड़ दो, दे दो इसको, ये तो ऐसा ही, ये तो मेरे अच्छे बच्चे हो, तुम छोड़ दो। अच्छा जब वो एक दफ़ा हो गया वो खुशी से कर देगा, दूसरी दफ़ा होगा फिर होगा। जब वो एक बच्चा सोचता है कि मेरी माँ हमेशा इसी दूसरे को प्रेफरेंस देती है, तो एक वक्त आएगा उसके दिल में अपने भाई के लिए नफरत हो जाएगी। जैसे आप देखिए कि सूरत यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को एक गलत फहमी हो गई थी, और वो क्या थी कि हमारे बाप को यूसुफ से और बिनयामीन से ज़्यादा मोहब्बत है और हमसे कम है। हालांकि ऐसा नहीं होता, हर बच्चा अपने अदब और अखलाक के साथ हिस्सा लेता है। तो ये जो चीज़ होती है ना कि आप अपने घर में देखें तो आप ये फील करें कि मेरा कौन सा बच्चा ज़्यादा गुस्से वाला है, कौन हमेशा आगे भड़ भड़ के बात करता है, और कौन बेचारा मार खा के चुप करके बैठ जाता है। याद रखिए कि मार खा के चुप करके बैठना भी नॉर्मल नहीं है। आप अपने उस बच्चे को सारी ज़िंदगी के लिए दबा रहे हैं, उसको कभी भी अपना हक लेना नहीं आएगा। और एक बच्चा जो हमेशा अपने से भी ज़्यादा दूसरी चीज़, एक अपनी भी आइसक्रीम पकड़ ली, दूसरे की भी पकड़ ली, और एक दफ़ा गलत काम भी कर लिया और उसके बाद आगे से नखरे भी कर दिए, तो याद रखिए वो डोमिनेटिंग हो जाएगा। वो हर मौके पे अपनी बात मनवाएगा। आज बहन भाइयों से और माँ से मनवा रहा है, कल बीवी से मनवाएगा, परसों बच्चों के ऊपर रोब डालेगा। ये जो आज हमें अपनी सोसाइटी में बहुत सारे कुछ बिगड़े हुए लोग दिखते हैं ना कभी कभी, याद रखिए कि उन सब की बुनियादें घर में पड़ती हैं। तो माँ का काम क्या है, सबको न्यूट्रल करें। जैसे रूम टेम्परेचर होता है ना, मसलन गर्मियों में हम एसी चला लेते हैं, क्यों कि रूम टेम्परेचर से गर्मी ज़्यादा होती है, तो हम उसको कम करके ऐसी कर लेते हैं कि ना हमें गर्मी लगे ना सर्दी लगे। इसी तरह सर्दियों में आप देखिए कि हम लोग गर्मियों में, सर्दियों में हम क्या करते हैं ये आप सब जानते हैं कि हम हीट चला लेते हैं। तो सबसे अच्छा टेम्परेचर कौन सा होता है कि ना आपको एसी चलाना पड़े ना आपको हीट चलानी पड़े। इंसान की शख्सियत भी ऐसी होनी चाहिए। आपको मुझे अगर इस शहर को, इस मुल्क को, इस दुनिया को बेहतरीन शहरी देने हैं तो हम बचपन से ही अपने बच्चों का टेम्परेचर कंट्रोल रखें, ये बहुत अहम है। आप देखिए कि आप किचन ओवन में खाना बनाएं और आप तेज़ आंच पे पका लें और वो जल जाएगा, ऊपर से जल जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। इसी तरह याद रखिए, बाज़ बच्चे ऊपर से जले भुने होते हैं, कड़क होते हैं, गुस्से के तेज़ हैं, लेकिन अंदर से वो कच्चे होते हैं, उनकी अंदर वो पुख्तगी नहीं होती, क्योंकि माँ ने उसको बचपन में उस तरह डील नहीं किया। फिर इसी तरह बाज़ दफ़ा आप हल्के तवे पे, ठंडे तवे पे रोटी डाल देती हैं, अब वो पकती रही पकती रही, आखिर में सख्त किस्म की एक रोटी पकी, नरम नहीं हुई, क्यों, ठंडा तवा था। अब उसको गर्म तवे पे डालती तो एकदम वो गर्म पकती और नरम हो जाती। बिल्कुल इसी तरह बाज़ शख्सियात बचपन से रिज रिज के, जिसको आप अपने कहते हैं ना, खुद में ही कुड़ कुड़ के और हर एक की बातें सुन के बिल्कुल सख्त हो चुकी होती हैं। आज ये जितने लोग हजारों रुपया खर्च करके साइकट्रिस्टों के पास जाते हैं ना, यकीन करें ये सब यही कुछ करते हैं। उनके बचपन की कहानियां सुनेंगे, बड़े होके हुआ अच्छा किसी ने मारा था, कहीं गिरे थे, क्या खौफ था, फिर कहेंगे अच्छा इसके जहन में ये खौफ बैठा हुआ है। आज भी किसी बड़े इंसान को आप देखें ना, आप अपने ऊपर लीजिए, हमें अपनी बचपन की बहुत सारी बातें याद होंगी। कोई एक वाक्य ऐसा होगा जिसका हम तस्वुर भी लाते हैं ना, तो एकदम हमें झुंझलाहट सी होने लगती है, हम परेशान होने लगते हैं, हम कहते हैं ऐसा क्यों है, क्यों, वजह उसकी ये है कि हमारी बचपन में उस चीज़ को इग्नोर किया गया था। तो अगर मैं इस बात पे माओं को ख़ास तौर पे, माशाल्लाह हर एक खुद माँ नहीं है तो किसी की खाला तो है ही है ना, किसी की दादी तो है, किसी की नानी तो है, बचपन से ही अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि इनका मिजाज बहुत अच्छा हो। मसलन मैं आपको छोटी सी मिसालें देती हूँ, हमारे कल्चर के चंद मशहूर जुमले हैं, बच्चा उठा रो रहा है, माँ क्या कहेगी, असल में ये कच्ची नींद उठ गया ना, इसकी नींद पूरी नहीं हुई। अच्छा जी, अब वो बच्चा कहेगा वाह ये तो माँ ने लाइसेंस दे दिया। अच्छा भाई आज ये अब क्यों रो रहा है, नहीं ये भूखा है, यानी जब भी ये बड़ा होकर भूखा भी होगा ना ये रोएगा चीखेगा। अच्छा, ये असल में थका हुआ आया है ना, असल में ये स्कूल से आया ना, यानी ये जो माएँ रीजनिंग करती हैं ना, वजूहात बयान करती हैं, ये नहीं करनी चाहिए। आप अगर अपने बच्चे का चेहरा ज़रा सा सुरख देखें ना, आपको शक भी पड़े ना कि लगता है इसको बुखार है, कभी उसको ना कहे। आप ज़रा सा कह के देखें ना, सर में दर्द है, ओके का साथ बुखार भी है, वो फिर लाडला बन के दिखाएगा। आप खुद टच करके देख लें, अगर वो गर्म है तो आप खुद ही उसे, नहीं मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है, अभी आओ बैठो ठीक होगा। हम पहले से जवाब दे देते हैं, जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मुंह से एक जुमला निकला ना कि तुम्हारे साथ यूसुफ को नहीं भेजूंगा, क्योंकि अगर तुम इसको ले जाओ और क्या पता वहां उसको भेड़िया खा जाए। बाद में बेटों ने वही वजह बना के बाप को कहा, हाँ आपको तो पहले ही डर था ना भेड़िया खाएगा, तो वही खा गया। तो इस पे मुफस्सरीन कहते हैं कि कभी अपने बच्चों को ऐसी सोच या ऐसा की पॉइंट नहीं देना चाहिए कि जिसके बाद बच्चे वही दोहरा दें, हाँ हाँ मामा आपको तो पहले ही पता था। बात समझ गए? जैसे उन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या किया था, झूठे थे ना, तो जाते ही बाप को कहने लगे, हाँ वैसे आप हम पे एतबार तो नहीं करेंगे चाहे हम कितने ही सच्चे क्यों ना हो। हालांकि झूठे थे, लेकिन बाज बच्चे आज भी ब्लेम करते हैं, मामा मुझे पता है आप, बस आप तो हमें इंटरनेट लगवा के ही नहीं देंगी, आपको हम पे एतबार क्यों नहीं है, आप तो हमें फोन लेकर ही नहीं देंगी, आप तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करती। समझ गए? ब्लैकमेलिंग का स्टाइल होता है। अगर हम चाहते हैं कि अगली जनरेशन, यानी मिसाल है कि इस वक्त जो बच्चे हैं और कल जब ये बड़े हों, तो शहर के बहुत महजब लोग हों, तो कैसे हो? मैं आपको छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो इधर उधर दुनिया में आते जाते में नज़र आती हैं वो देखती हूँ। अल्लाह ताला ने मौका दिया अपने रास्तों में निकलने का, कभी ईस्ट कभी वेस्ट कभी नॉर्थ कभी साउथ, जहाँ अल्लाह ले जाते चले जाते हैं। यकीन करें, बगैर किसी अपने पर्सनल कमेंट के मैं आपको सिंपल सा बताऊं कि सबसे ज़्यादा झगड़ने वाले, गुस्से वाले, अनटॉलरेंट यानी बर्दाश्त ना करने वाले हमारे अपने कल्चर के लोग हैं। हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। रोड पे क्यों इतने हॉर्न होते हैं? पीछे वाला सब्र नहीं कर रहा, अगला किधर जाए, आगे जगह ही नहीं है, तो पीछे वाले को सब्र करना पड़ेगा ना। आप देखिए कि जहाज़ अभी रुकता भी नहीं है और हम लोग खड़े होने को तैयार हो जाते हैं। कोई कहता है सीट बेल्ट बांधो, हम सीट बेल्ट बांधने को तैयार नहीं है। मैं अक्सर सोच, मेरे से बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है बाज़ दफ़ा, कि यानी मैं नेगेटिव से मुराद बुरा नहीं सोचता, यानी मैं ये सोचती हूँ कि हमारे मुल्क में जो हम मुसलमान हैं, जिनके दीन में इतना अल्लाह के नबी सल्लम के नाते से और बाकी चीज़ों के नाते से करेक्टर बिल्डिंग की गई है, लेकिन हमारे किरदार में वो चीज़ नज़र क्यों नहीं आती? आज आप देखिए छोटी छोटी बात पे झगड़े हैं, मासी के साथ झगड़ा है तो बाहर, ड्राइवर के साथ झगड़ा है तो सड़क पे, किसी की गाड़ी आगे आ गई तो झगड़े झगड़े। शायद आपको इतना एहसास ना हो, क्योंकि आप अब दिन रात सुबह शाम ये चीज़ें देखते हैं। हालांकि मैं खुद देखती हूँ कि जब वेस्ट में किसी का, यकीन करें, हल्का सा भी कसूर होगा ना, थोड़ी सी भी उनकी गलती होगी ना, वो उसको कैसे कंपनसेट करते हैं। अभी चंद दिन पहले किसी ने तस्वीर भेजी हुई थी, हालांकि वो तस्वीर ठीक नहीं लगी मुझे, कि एक शख्स स्टेज पे खड़ा है और रुकू में जैसे हम जाते हैं ना, इस तरह झुका हुआ है, ऐसे खड़े, नीचे सब लोग बैठे हुए और वो यूं खड़ा है, तो मुझे लगा कि जैसे ये एक आदमी और ये रुकू में गया हुआ है। तो उसके नीचे लिखा हुआ था कि जापान का, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये वो वजीर है कि 20 मिनट तक किसी वजह से वहां बिजली चली गई, तो ये वजीर पब्लिक के सामने आके 20 मिनट तक खुद रुकू में झुक गया, अपने आप को झुका लिया सॉरी कहने के लिए, शर्मिंदा होने के लिए कि मेरी वजह से ये हो गया। हम आज गलती करते हैं और साथ उके कहते हैं तुमने इधर क्यों खड़ी की थी। यानी आप समझ रहे हैं कि हर चीज का ब्लेम हम दूसरे पे देने के आदी हो चुके हैं। बास दफा हम लोग कल्चरली भी इस तरह के हो चुके हैं कि दूसरों के ऊपर अपनी गलतियों का डालते हैं। मुझे ट्रेवल के दौरान याद है कि एक ऐसा ट्रेवल था कि जिसमें हम लोग कहीं बाहर थे, तो हमारे पास काफ़ी लंबा स्टॉप था उसके अंदर, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की काउंटर पे कि अगर हमारा इतना लंबा स्टॉप होगा तो आप हमें अकोमोडेट कर दें, कुछ भी कर दें। तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, आपका टिकट में ऐसे ही लिखा है अकोमोडेशन नहीं है। हमने कहा ठीक है, जितने भी घंटे हैं हम उसको फिर वैसे एयरपोर्ट पर बैठ जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि जो हमारी पहली फ्लाइट चलनी थी, अमेरिका से हम लोग शायद पाकिस्तान आ रहे थे, बीच में यूरोप में कहीं स्टॉप ओवर था, उधर से उनकी जो फ्लाइट थी अपनी रूटीन से हट के, आप कह लीजिए, यानी कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ये जो आज मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं उस वक्त भी यही सोच रही थी कि अगर ये वेस्ट में ऐसा होता तो उन लोगों ने तो पता नहीं हमारे रास्तों में कालीन बिछा देने थे कि आप बैठे हम आपको ये करते हैं। इतना वो प्रिविलेज देते हैं, जो मैं भी आपको बिल्कुल अपनी बात सुनाने लगी हूँ, कि हम जर्मनी के किसी शहर में, हमारा स्टॉप था अमेरिका से जर्मनी की फ्लाइट, उनकी किसी वजह से आधा घंटा शायद लेट पहुंची जर्मनी में। अब आप इमेजिन करें, हमने अमेरिका में पूछा कि क्या हमें जर्मनी में अकोमोडेशन मिल सकता है, उन्होंने कहा नहीं मिल सकता, आपकी टिकट पे नहीं लिखा हुआ, ख़त्म हो गई, हम बैठ के आगे जो होगा देख लेंगे। लेकिन अमेरिका से उनकी फ्लाइट जो थी, अपनी गलती किसी वजह से, कोई रीज़न होगी, हमारे पास तकरीबन 10-12 घंटे का स्टिल वहाँ टाइम था। लेकिन आपको पता है, जूँ ही हम जहाज़ से उतरे हैं, ट्रांसफ़र डेस्क होता है, उन लोगों ने उधर औरों को भी बुलाया, हमें बुला के हमें इस तरीके से उन्होंने अकोमोडेट किया, होटल दिया, वाउचर दिए, साथ राइड दी, और हमें लेकर छोड़ के होटल में आए। वजह क्या, हमने कहा कि अमेरिका में तो आपने हमें नो कह दिया था, तो अभी आप क्यों? कहने लगे बिकॉज वी आर लेट, वी आर कंपनसेटिंग, हम अपनी उस गलती को माफी मांग रहे हैं या आपका दिल खुश कर रहे हैं। कि हालांकि उनको हमारी कोई फ्लाइट नहीं मिस हुई हमारे पास पहले, हम तो खुश थे, चले वहां भी बैठना था, यहाँ बैठे हैं, कोई बात नहीं है। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि मुहज्जब और पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, उनसे गलती जब होती है, सबसे ही होती है, तो वो उसको कंपनसेट करते हैं। हमारे दीन ने ये चीज सिखाई थी कि इत्फा बिल्लाति हियासन, जब भी तेरे से कोई बुराई हो जाए, कोई कमी बेशी हो जाए, तो उसके पीछे अच्छा काम कर ले तो तेरी बुराई मिट जाएगी। लेकिन हम आज के दौर में गलती करके अगले के सर पे और ज्यादा घूरते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपके साथ ये बात क्यों हुई। आप किसी से कोई चीज़ खरीदने जाएं, आप 5 मिनट में वो चीज़ वापस लेके जाएं, वो आपको कभी वापस नहीं लेंगे। वहाँ आप देखिए 3-3 महीने तक वो लोग एक ही चीज़ स्लिप के साथ है। कई ऐसे लोग हैं जो मैंने सुना है कि चीज़ें इस्तेमाल करके भी वापस कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है 3 माह के अंदर अंदर ये होना होता है, राइट? लेकिन हमारे मुल्कों में इसका तसव्वुर नहीं है। एक दफ़ा आपके साथ कोई काम हो जाए, यानी ऐसी वाकया, ये तो आपको कहना चाहिए कि अपने जिस्म से कपड़ा उठाने वाली बात है, यानी ऐसे एक्सपीरियंसेस आने से पहले से ही हो जाते हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर आप किसी ट्रेवल एजेंट से आप टिकट लेने के लिए घुसते हैं और यस कह के बाद में नो कह देते हैं, उन्होंने आपसे पैसे काट लेने हैं। पीछे से चार्जिंग चेक करवाई भी जा रही है और पता चल रहा है कि PIA ने आपसे पैसे नहीं लिए। ये आज की बात नहीं, पुरानी बात कर रही हूँ, इसी ट्रिप में, यानी सिर्फ पे करने थे पैसे, इधर टिकट बाहर से खरीदा, कहा पे इधर करे, जब इधर पे करने भेजा, उन्होंने यहाँ उनसे 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा मांगा। जो पैसे देने के उनको पता ही नहीं था, इन्होंने अपने हिसाब से जो भी थे वहाँ बैठे हुए उन्होंने मांग लिए। बाद में जब पता चला, उन्होंने कहा कि रहने दे, नहीं चाहिए, उन्होंने वॉइड कर दी टिकट। लेकिन अगले दिन गए तो पैसे जो थोड़े ले लिए हुए थे एडवांस में, उन्होंने काट के दिए। हालांकि जब पीछे PIA वालों से पूछा, उन्होंने कहा ये तो टिकट बना ही नहीं, होल्ड किया था उन्होंने थोड़ी देर में, आपने घंटे में कहा नहीं चाहिए तो काट दिया। लेकिन ये पैसे PIA को नहीं गए, ये उनकी ट्रेवल एजेंसी को गए। वजह क्या, ये लोग कहते हैं कि हाथ आया पैसा कुछ जाने नहीं देता। याद रखिए, ये मुसलमान नहीं होता। मैं इतना दर्द रखती हूँ अपने दिल में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, हम कितना हमें प्यार है, हम इस्लाम से, पाकिस्तान से, अपने कल्चर से प्यार होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हम दूर से जब आते हैं, यकीन करें, हमें बेकायदगियाँ भी दिखें जो भी, फिर भी हम कहते हैं हमें अपनाइत लगती है। लेकिन बींग अ नेशन, हमारी उम्मत की तरबियत कम हुई हुई है। आप और मैं आज दुनिया में रहते हुए अपने बच्चों के बचपन से झगड़ों को कंट्रोल करेंगे, आपको बाहर के झगड़े नहीं मिलेंगे। जितने मुकदमे पाकिस्तान में होंगे, मैं इंडिया को तो नहीं जानती, बाकी मुल्कों को नहीं, लेकिन आप कभी यहाँ की अदालतों में जाकर आप देखें, अल्लाह ना करे कोई जाए, ऐसे लोग बेचारे सारा सारा दिन धूप गर्मी सर्दी में खड़े रहेंगे, कोई पुछताने हाल नहीं है, क्यों झगड़ते इतने मुकदमे। आप नबी सल्लम के मदनी दौर को पढ़ लीजिए, आपको उंगलियों पर गिने हुए मुकदमे मिलेंगे। कोई अगर कत्ल हो गया किसी से, कत्ल तो होता ही नहीं था, जिना हो गया या किसी ने शराब पी ली या कुछ, उंगलियों पे गिन सकते थे, इतने थोड़े मुकदमे थे। आज अगर हम अपनी उम्मत की तरबियत कर दें, यकीन करें कि ये लॉयर्स का जो काम है ना, ये आधे से भी कम रह जाए। पिछले दिनों मैंने सही बुखारी पढ़ाई, तो उसमें कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, तिजारत के और जुल्म के, तो मैं अपने साथियों को यही कह रही थी कि अगर ये बुखारी को आम कर दिया जाए, तो यकीन करें हमारे मुल्क के आधे से ज़्यादा मसले इधर ही ख़त्म हो जाएं। कोई किसी की ज़मीन हथिया सकता है, अगर उसको इस बात का यकीन हो कि क़यामत के दिन 7 ज़मीनों के तौक मेरे गले में पहनाए जाएंगे? नहीं कर सकता। ये कमी बेशी क्यों होती है? हम अपनी ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। आज तो बोल के ही जाना है, जो होगा बाद में देखेंगे। कुरान क्या कहता है कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैही रक़ीबुन अतीद, तुम्हारी जुबान से जो एक लफ्ज़ भी निकलता है तो लिखने वाला उसको लिख लेता है। आप देखिए, मैं बोली और मेरा फरिश्ते ने लिख लिया। जितना ज्यादा हम अपने दीन को समझेंगे, जितना ज्यादा हमारे दीन की बातें हमारे दिलों में पक्की होंगी, आप देखेंगे कि उतना ही ज्यादा इंशाअल्लाह ताला तज़किया होगा। चलिए खैर बचपन से आगे आते हैं थोड़ा सा। बचपन की बात से इसको ये भी समझ लीजिए कि मैं और आप अपना बचपन तो वापस नहीं ला सकते ना, लेकिन हम अपने बच्चों का बचपन ला सकते हैं। जैसे आप घर में बच्चे अभी खेल लेंगे, थोड़ी देर में आएंगे, इसने ये तोड़ दिया, इसने ये जोड़ दिया। मैं आपको प्रैक्टिकल एक दो एग्जाम्पल देती हूँ कैसे वक्त में बच्चों को कैसे डील करें। एक घर में थे तो जहाँ दो भाइयों के बच्चे आपस में, हम उम्र ही होते हैं मोस्टली, तो वो खेल खूल रहे होते हैं। अब जब वो बच्चे हुए ना तो रोते हुए आ गए दोनों, फूफो इसने ये कर दिया, दूसरा कहता है उसने मेरा ले लिया, ये कर दी, जैसे वो शिकायत लेने के लिए कि मेरे पास आए। मेरे भाई के बच्चों की बात है, छोटे छोटे थे ये दोनों, दोनों ही रो रहे हैं। मजे की बात है, जो जालिम होता है जो मजलूम होता है, रो दोनों ही रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कौन है। और बाद जो शिकायत लेके आता है वही जालिम होता है, जालिम कह लें या ज्यादती करता है। तो खैर जब उसने कहा ना इसने मेरे से ये किया वो किया उसने दोनों, तो मैंने कहा कि आप में से कौन बड़ा बनना चाहता है? बच्चों को तो बड़ा होने का बहुत शौक है ना, तो दोनों ने हाथ खड़ा कर दिया कि मुझे भी बड़ा होना है। मैंने भी, तो मैंने कहा जिसको बड़ा होना है वो दूसरे को कह दे मैंने तुमको माफ किया। बस मैंने तो ऐसे कहा, यकीन करें उन्होंने मुंह भर के जो मैंने तुम्हें माफ किया। फूफो में बड़ा हो गया हूं ना, फूफो में बड़ा हो गया ना। अब आप देखिए वो दोनों हंसते हुए वापस चले गए। आप अपने बच्चों को हमेशा ऐसी बातें सिखाएं कि जिससे उनकी करेक्टर बिल्डिंग हो। हमारे दिल में अल्लाह का प्यार नहीं है तो अल्लाह अपने बच्चों को कैसे देंगे? अगर हमें अल्लाह से खौफ नहीं आता तो हम अपने बच्चों को अल्लाह का खौफ कैसे देंगे? लेकिन बचपन से इन चीज़ों को रखें। बाद जब आपको होता है कि कुछ बच्चे माओं को अपनी तरफ माइल करने के लिए जिद्दें करते हैं, जिद्दी बच्चे बन जाते हैं। अब माँ ने एक जिद पूरी की, बच्चे को पता है जब रो के बोलता हूँ तो माँ आती है। बस उसने एक माँ का एक वो कहना चाहिए कि वीक पॉइंट पकड़ लिया कि जब भी मैंने माँ को बुलाना है मैं रोऊंगा तो मेरी माँ आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि माँ बनना कोई आसान काम नहीं है। फिजिकली तो लोग कहते हैं 9 महीने बड़े मुश्किल होते हैं, बाद में भी कुछ मुश्किलात आती हैं, लेकिन मुझे लगता है जो तरबियत के 2-3 साल है ये बहुत मुश्किल है। घरों में अमन हो, चैन हो, सब कुछ हो, बिलीव मी ये बहुत खूबसूरत रिश्ते हैं, ये बहुत मीठे रिश्ते हैं। इसके अंदर सिर्फ ओवर एक्सपेक्टेशन है, वजह बहुत सारी हैं। बस आज जितना भी नसीब में था, मैं नहीं चाहती कि हम ओवर टाइम लें, लेकिन खुलासा क्या है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, दिल साफ रखें, मोहब्बतें एक दूसरे को दें और लें, और फॉरगिव फॉरगेट। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।